आस्तिक इस समय अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी आभा एक डरावने मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। शारदा देवी और मिश्री एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक कोने में खड़े थे और उनका चेहरा डर से भर गया था। लेकिन अरुणिमा ने आस्तिक से कहा, राजा साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे परिवार को ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं? आस्तिक का पूरा परिवार इस समय एक तरफ खड़ा था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आस्तिक से जाकर सवाल जवाब कर सके। रजत ने कुछ कहने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि कीर्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि वो जानती थी आस्तिक जब अपने मॉन्स्टर रूप में होता है तो उस समय वो किसी का लिहाज नहीं करता है, और वो नहीं चाहती थी कि आस्तिक रजत को नुकसान पहुंचाए। और यही कुछ हाल इस समय प्रणाली और सक्षम का भी था। प्रणाली ने सक्षम को आगे ही नहीं जाने दिया था। अरुणिमा का सवाल सुनकर आस्तिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने एक जोर से लात साइड टेबल पर मारी, जिससे वो टेबल एक ही मिनट में चकनाचूर हो गया। और आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहता है, तुम्हारा तुम्हारी माँ से रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने मुझसे शादी की थी, इसलिए अभी फालतू में माँ बेटी का दिखावा करना बंद करो और चुपचाप से कमरे में जाओ। उसके बाद आस्तिक गार्ड्स को आवाज देते हुए कहता है, गार्ड्स, निकालो इस कचरे को मेरे घर से बाहर। दरवाजा खुलता है और एक एक करके तीन चार रॉयल गार्ड्स अंदर आते हैं। उन्हें अंदर आया देख शारदा जी और मिश्री दोनों के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, लेकिन अरुणिमा का चेहरा भी अब डर से भर गया था। वो जल्दी से अपनी माँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और रॉयल गार्ड्स को वहीं रुकने के लिए कहती है। रॉयल गार्ड्स अपनी रानी साहिबा का ऑर्डर कैसे ना फॉलो करते, वो अपनी जगह पर ही रुक गए और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए और अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगे। आस्तिक गुस्से में खड़ा होता है और अरुणिमा से कहता है, अरुणिमा, सोच लो, अगर आज तुम मेरे फैसले के खिलाफ गई तो तुम आज के दिन के लिए हमेशा पछताओगी। अरुणिमा ने रोते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं राजा साहब? वो मेरी माँ है, वो कहाँ जाएगी इस उम्र में? वो क्या काम करेगी? कहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारेगी? वो जैसी भी है, उन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला है। और मिश्री, उसकी उम्र ही क्या है, वो तो इस वक्त एक छोटी बच्ची है। कैसे आप उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़ सकते हैं? राजा साहब, आप मेरे परिवार को किस बात की सजा दे रहे हैं? इस समय माँ की हालत ठीक नहीं है और मिश्री भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। परिवार को इस वक्त मेरी जरूरत है राजा साहब, ये लोग अकेले कैसे रहेंगे? मुझे बस उनकी देखभाल करनी है। आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। आस्तिक ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, और वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। इतने दिन से मैंने तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, और मैं चाहता हूं कि तुम सही सलामत मेरे बच्चे को जन्म दो। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नरक होता क्या है। अरुणिमा का चेहरा हैरानी से भर गया था और आस्तिक की बात सुनकर बाकी सबके चेहरे पर भी हैरानी आ गई थी। आस्तिक अच्छे होने का दिखावा सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि अरुणिमा इस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो नहीं चाहता था कि घर में तनाव का माहौल हो और अरुणिमा को स्ट्रेस ले, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत पर असर हो। बस इसलिए आस्तिक खुद के गुस्से को दबाए बैठा हुआ था। अरुणिमा हैरानी से और डर से आस्तिक को देखते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं राजा साहब? आप मेरे साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकते हैं? आस्तिक गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है, मैं खेल रहा हूं या तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी? याद दिलाऊं तुम्हें कि तुमने इस गेम की शुरुआत कहां से करी थी? तो ठीक है, सुनो अरुणिमा, आस्तिक रायचंद, तुमने मुझे प्यार का झांसा देकर अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। तुमने मेरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे अपने नाम करने की कोशिश की थी। तुमने अपनी बहन के नाम पर एक फेक बैंक अकाउंट बनवाया और उस पर पैसे जमा करती रही ताकि तुम कल को मुझे छोड़कर जा सको, और तुम अपने साथ साथ मेरे बच्चे को भी ले जाना चाहती थी। तो अब तुम्हें याद आया अरुणिमा कि गेम कहां से शुरू हुआ था?
लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ अरुणिमा, ये सारी चीज जो तुमने बहुत पहले से सोचकर रखी थी ना, तो तुम्हारी सोच खत्म हो गई थी जहां मैंने वहां से सोचना शुरू किया था। तुम्हारे प्यार के झांसे में तुम्हें कभी आया ही नहीं था, और वो प्रॉपर्टी जो तुमने अपने नाम करवाई थी मुझे प्यार की चाशनी पिलाकर, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, तुम्हें सिर्फ उस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। प्रॉपर्टी अभी भी मेरे ही नाम है, और मैं जब चाहे तब तुमसे वो पावर ऑफ अटॉर्नी छीन सकता हूं। जहां तक बात रही मिश्री के बैंक में पैसे जमा करने की, तो जिस दिन तुमने मिश्री का डॉक्यूमेंट बैंक में जमा किया था ना, मेरे पास उसी दिन बैंक मैनेजर का फोन आ गया था। जो भी पैसे तुमने मिश्री के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे वो ऑटोमेटिकली वापस मेरे ही अकाउंट में आए हैं। जिस दिन तुम्हारा गेम मेरे सामने आ गया था, चाहता तो उसी दिन तुम्हें इस घर से निकाल सकता था, लेकिन मुझे उसी दिन पता चला कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, इसीलिए अपने बच्चों के लिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया था। पर अब ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी है, शायद तुम उस तरह की लड़की हो ही नहीं जो किसी की बीवी बन सके, किसी की मां बन सके। मैंने गलती कर दी तुम्हें एक मौका देकर, पर अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूं कि खून अपना असर दिखाता ही है। जिस तरीके से तुम्हारी मां का गंदा खून तुम्हारे अंदर है और तुम अपना रंग दिखाने से पीछे नहीं हटी, उसी तरीके से तुम्हारे पेट में पल रहा तुम्हारा खून भी एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे अंदर अभी से जो भावनाएं पल रही है वो सारी की सारी इसी वक्त दम तोड़ दें, क्योंकि जितना मैं तुम लोगों से जुड़ूंगा उतना ही अपनी जिंदगी को नरक बनाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। पहले भी राजा था और आगे भी राजा ही रहूंगा। आस्तिक अपने स्टडी रूम में जाता है। सब लोग हैरानी से अरुणिमा को देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे और इस वक्त प्रणाली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कोई भी इस समय आस्तिक का सामना नहीं करना चाहता था।